विचार चल रहा था बाह्य विषयों में, मन का प्रसर नहीं हो सकता। मन तो भीतर रहता है, अनुपरिमाण वाला बाहर कहां से चला जाएगा, फिर बाहर जाए फिर आएगा कहां से, फिर दिक्कत होगी ना। इसलिए मनु मन को जो अनुपरिमाण या मध्यम परिमाण मानते हैं, उन लोगों के लिए मन तो बाहर आना जाना संभव है नहीं, विषयों का ज्ञान ही नहीं हो पाएगी, आपत्ति है, ये दिया था। अब कहते हैं ठीक है, यदि वेदांत आदि शास्त्र मनुस्मृत्य तस्य मध्यम परिमाणते बाह्य प्रसर स्वीक्रियता, वेदांत आदि शास्त्रों के अनुसार चलते हुए मध्यम परिमाण होता हुए बाहर जाने का, क्योंकि उनके दृष्टांत क्या है, तालाब, अंतकरण क्या है, एक तालाब वस्तु पानी के समान है, हृदय रूपी उपाधि है, तालाब बना हुआ है, उसके अंदर अंतकरण रहता है और वो नाली के द्वारा बाहर निकलता है। नाली क्या है, इंद्रिया, इंद्रिया द्वारा बाहर आता है और विषय आकार में खेती के आकार से पानी हो जाता है, इसे विषयाकार वृत्ति हो जाती है, होकर तद आकार का केवल आकार को छोड़ के उस आकार का स्वरूप को लेकर के वापस आ जाता है। इस प्रकार से जो मानते हैं उनके अनुसार तो बाहर जाता है मन, ठीक है, बाहर जाता है, तो उसको लेकर के भी खंडन करना है, उस पक्ष को भी। बाह्य प्रसवीक्रियता तरी शक्ति घटयत्र किंकुरियात गृहीत्वांतरथा विषय बुधनोदराधिकं तत्तु गृहीत्वा न च युज्यते। कहते हैं कि भाई जिस आकार को प्राप्त किया मन, क्या उसको लेके आता है, या ये अंतकरण यहां से जो गया वृत्ति रूपेण घड़ा को लेकर आया, कि क्या लेके आया वहां से। घट का मतलब क्या, दो चीज है वहां, एक नाम है एक रूप है ना, नाम है घटक और एक रूप है आकार उसकी, किसको ले आया। नाम विशिष्ट आकार कोई व्यक्ति व्यवहार के योग्य मानता है, केवल नाम व्यवहार योग्य नहीं, केवल आकार व्यवहार योग्य नहीं है। नाम विशिष्ट जो आकृति वाला है, इसे कहने बुधनोदराधिकम, बुधन उदर आदि युक्त, नीचे पेंदी बना हुआ है, फिर गोल मोटोल है, उधर है, फिर ऊपर मुख है, ये सारा इस प्रकार का जो घड़ा है वो व्यवहार योग्य होता है। जब उसको लेके आ गया अंदर में, तो लेके नहीं आ सकता, अंदर कहां घुस जाएगा घड़ा अंदर, हर मकान को जरूर मकान अंदर चला जाएगा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहता है देखिए, शक्ति घटे अत्र किं कुर्यात्, यदि एक शक्ति वृत्ति विशेष अंतकरण की शक्ति है, वो वृत्ति वो जाती है, ऐसे कहते घटे अत्र किं कुर्यात, वहां जाकर वो क्या करता है बताओ। आपका कहने का अंतर अथ गृहत्व आविशेत, मैंने घट को पकड़ करके वो भीतर आके घुस जाता है क्या, ये तो हो नहीं सकता। क्यों, बुधनोदराधिकम, ये जो बुधनोदराधि घड़ा इतना लंबा चौड़ा, वो अंकों में से घुसकर अंदर कैसे चला जाएगा, अंतकरण यहां से आया था, यहां से गया ना घड़ा देखने, ओ इतना लंबा छोटा घड़ा ये अंकों के क्षेत्र से अंदर कैसे चला जाएगा, तो हो ही नहीं सकता है, असंभव। तत्व गृहत्वा न चुज्जत है, इसलिए यह आपकी जो व्यवस्था है गृहत्वा जो संबंध हो जाएगा, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जाता क्या है, बड़ा विचार करके देखा जाए, एक व्यापक चेतन व्यवस्था संबंध माने बिना चलेगा ही नहीं। इसलिए वेदांत में यद्यपि कहा अंतकरणावचिन चैतन्य, वृत्तिवचिन चैतन्य, विषयावचिन चैतन्य, उसको नहीं ले रहा है, मोटा मोटी ले रहा है, अंतकरण बाहर जा रहे दृष्टांत को लेकर पकड़ रहा है, दृष्टांत उन्होंने दिया तालाब की थी उसको पकड़ रहा है। लेकिन वहां तात्पर्य क्या है, जल सामान एक, यहां भी जल वहां भी जल वहां भी जल, तभी संबंध हुआ, ये तात्पर्य था, जैसे चैतन्य की एकता तात्पर्य वहां था, दृष्टि जवाब दृष्टांत को लेकर खंडन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वास्तव में वह आकार तो आता नहीं, नाम भी नहीं आ सकता, गया क्या अंदर में आपका, आज की भाषा में कहा जाए इतना डाटा आपके दिमाग में भरा पड़ा है, बचपन से पढ़ रहे लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे, बहुत कुछ ज्ञान कितना है, कई भाषाएं भी है, एक दो भाषा भी, वो डाटा किस रूप में है, वो सावय है कि निरवय है, सावय होगा तो भर जाना चाहिए था अब तक, कितना बड़ा अंदर है आपके पास। यही तो विचार कर रहे हैं हम, यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। यदि सावय होता तो भर जाना चाहिए ना, कोई किसी भी अंदर टिपा होगा जिसे भर रहे हैं वो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए था है? भरा कहा, अभी और भी जा रहा, और भी जा ही रहा है ना, लगातार जा ही रहा है, ये भर गया तो और फ्लो होता, भरा है नहीं और न भी कभी भर रहा है। ये महाशनो महापापमा, क्या कहा भगवान ने, महाशनो खाते रहता है, खाते रहता है, हजम होते रहते, पता ही नहीं चलता कहां गया, क्या हुआ, कहां है पता ही नहीं, कितना भर रहा है पता नहीं। यदि वो साकार है और आपका अंतकरण पर बर्तन भी साकार है, भर जाना चाहिए था अब तक, अनंत जन बीत गए अनादिकाल। ये कैसी मेमोरी है, कैसा जीबी है, कितने जीबी का मेमोरी है, ये कैसा कंप्यूटर आपका लगा हुआ है भाई। सूक्ष्म रूप कितना भी सूक्ष्म हो तो भर जाना चाहिए था ना अंतकरण, अब तक क्यों नहीं भरा, ये बात उठ रही है ना। यही तो हम पूछ रहे थे, सावय होता तो भरा क्यों नहीं अब तक आपका घड़ा।
तो हम तो विस्तार की दृष्टि से कह रहे थे,
स्थूल नहीं बड़े सूक्ष्म तो भरना चाहिए। आज कंप्यूटर में देखिए आप कितना बड़ा छोटा सा चिप है इसके अंदर, इतनी सी है ना, आप देखते हो ना कितना डेटा से भर जाता है। ये भी कहता भर गया, अब मिटाओ भाई कुछ, अभी हम डाल पाएंगे, बोलता कि नहीं बोलता है, है तो सूक्ष्म में, अभी स्थूल सब भर रहा है इसमें, सूक्ष्म में तो भर रहा है, फिर भी कहता हाउसफुल बन गया। इसके अंदर जो है वो कैसा चीज है जो भरा ही नहीं आज तक, न भरेगा कभी। वेदांत जी कहता है सब तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि वाकई में है ही नहीं तो है समझ रहा, तो भरेगा क्या, सारे चल रहा खेल। जैसे एक स्वप्न में आग 5 मिनट बीतता नहीं है, यहाँ के अनुसार आयु बीत जाती कि नहीं बीत जाती, वहां तो पैदा हुए बड़े हुए बहुत को जो भी होना होगा, अगर मर भी गए, मरते तो एक्सीडेंट हो गए, घबरा के उठ गए हैं, यहाँ का 5 मिनट वहां जो 50-60 साल आयु, ये कैसे तय होगा। जैसे एक स्वप्न में आने एक के अंदर एक भी हो जाता है स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न हो रहा कि नहीं होता है, एक के बाद ये तो होता ही है, एक भीतर एक भी हो जाता है। आपकी कल्पना में एक जगत के अंदर दूसरी दूसरी तीसरी जगत बना लिया ना आपने, कैसे बना लिया, तो वैसे ही सारा जगत बाहर जगत में चल रहा है। हमें लगता है बहुत अनंत संस्कार है, अनंत वासना है, वो सोचोगे तो वैसे ही रहेगा, जैसा सोचोगे वैसा है, और सोचो वास्तव में कुछ भी नहीं। जैसे वो गाने में गया ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मानो तो कोरा कागज है, ना मानो तो कचरा बैठी है, दुनिया भर भरा पड़ा है। अपने अहंकार में आप सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मेरे अंदर वो है तो है कचरा पेटी तुम्हारी ही पास है फिर, और मैं कुछ भी नहीं, मैं शुद्ध ब्रह्म जिनको निराकार हो गया, कुछ भी नहीं। इसलिए आपके अपनी निश्चय पर सब कुछ निर्भर है। इसे किसी को पकड़ के ना अंदर लाया जा रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना उसका चित्र यहां पड़ रहा है, ना कुछ, ये सब प्रक्रिया बौद्धिक जो है एक तरह से आपने कसरत किया है दार्शनिक को, यही समझाने के लिए कि आप बुद्धि विवेक करके देखें सच्चाई में इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं टिकता। किसी भी प्रक्रिया से सोचो ये हो रहा है ऐसा हो रहा है, जितने भी प्रक्रिया दिख रहे हैं आप अंत तो कहते लगता है कोई भी प्रक्रिया ठीक नहीं, यही समझाने की कोशिश है। इसलिए शैवाद्वैत मान लो, सर्वम शिवम सब चैतन्य, अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवो हम, इसके अलावा शिव हमेव इदम सर्वम, जब तक ये बात नहीं आती है तब तक कोई समन्वय नहीं हो सकता, ये समझाने का प्रयास चल रहे। देखिए ठीक है, शक्ति ही अत्र घट विषय किंकुरियात इति प्रश्न, बताओ यदि शक्ति मान भी लिया जाए मन आदि में अंतकरण आदि में वृत्ति रूप में निकलती है वो बाहर जाती इत्यादि इत्यादि, वो घट के विषय में क्या करती है निकल करके बताओ। उत्तरम ददाति, यदि कोई कहता है मन घटादि को उपसृत्य घट व्यक्ति गृहीत्वा आदाय अंतर अथा अंतर अथा मैंने शरीराभ्यंतर आविशेत प्रविश, ये मन क्या करता है बाहर चला जाता है घटादि देश में, वहां जाकर के घटादि को व्यक्ति को पकड़ लेता है, पकड़ करके उसको भीतर ले आता है, शरीर के भीतर ले आता है, भीतर प्रवेश कर जाता है। इत्यापत्ति से ऐसा होता नहीं, किसके हृदय में घड़ा जाता हो किसने देखा नहीं। इसलिए यदि आप कहते बाहर जाता है तो बाहर जाके उसने किया क्या, सब पकड़ के लाया क्या, ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब नहीं ला सकता। इतना ही नहीं, तथैव वेदांत ने यथा, देखो दृष्टांत भी देखा रहे वेदांतियों का, जलम तड़ागोदरस्थम ततो निर्गत्य कुल्यात्मना केदारादिकं प्राप्य केदराद्याकारण परिणमते। वेदांत सिद्धांत होता क्या है, जैसा तड़ाग मैंने तालाब आदियों के पेट में अंदर में रहने वाला जो जल है क्या करता है, नाली आदि के द्वारा बाहर निकलता है, ये नहीं बाहर निकल कहा गया केदार आदि काम खेती आदि जैसा आकार वाला है, त्रिकोण है गोल है चौकोर है जैसा भी है उस आकार को प्राप्त करके केदार परिणाम दे, केदार परिणाम हो जाता है। तथा मनो भी उस मन भी क्या कर रहा है, इंद्रिय प्रणाली के बाहर गया, शरीर बहिर्निर्गत्य शरीर से बाहर जा करके विषय प्रदेशम प्राप्य विषयाकार परिणाम दे, विषय प्रदेश को प्राप्त करके विषयाकार को प्राप्त हो जाता है मन। सिद्धांत ना तत्व मनस्तु, लेकिन आपके सिद्धांत के अनुसार यह नहीं हो सकता, क्यों मनस्तु बुधनोदराधिकम बुधनंच तुतरंच तदाधिर यश स बुधनोदराधिक शेषाधिवास सूत्र का प्रत्यय हुआ, तम घटाधिकम गृहीत्वा शरीराभ्यंतरम निविशेत। लेकिन समस्या ये होगी वो आकार को प्राप्त हो गया ना, आपने जो दृष्टांत दे रहे हो उसे क्या हो गया, जल यहां से गया तालाब से खेती में चला गया वापस पाया नहीं, उसी से मन यहां से गया विषयकार को प्राप्त हो गया, गया सो गया, फिर यहां भी हम किसको हो रहा है कैसे हो रहा है, वो तो विषय में चला गया वहां गया बाहर गया और विषयकार प्राप्त कर गया, उस आकार में रह गया, यदि उस आकार को प्राप्त परिणाम होकर वही रह जाए मन, ज्ञान आपको कैसे हुआ, मन तो वहां गया था, वहां गया आने की प्रकृति बोला नहीं, वहां वो लौटता है क्या, लौटे बिना ज्ञान कैसे हुआ, वहां तो जल की व्याप्ति, इसलिए वहां वेदांत क्या कहेगा फिर, जल की व्याप्ति में तात्पर्य लौटने का नहीं, एक ही जल यहां वहां वहां व्याप्त हुआ ये दिखाना है, एक ही चैतन्य अंतकरण वृत्ति और विषय में व्याप्त हुआ, व्याप्त होने से लौटने की जरूरत नहीं, यदि उस आकार को प्राप्त कर रहे कह रहे परिणाम कहोगे तब आपत्ति है, या व्याप्ति की बात है परिणाम की बात नहीं, यही पूर्व पक्ष वेदांत को थोड़ा अलग ढंग से लेकर के खंडन कर रहा है, ये परिणामवाद को लेकर के कह रहा है, हम परिणामवाद नहीं कहते वहां वेदांत, यदि परिणामवाद माने इसे खंडन ठीक है, मन आ गया मन वो विषयकार को प्रणाम कर लिया, प्रणाम करके वही रह गया, फिर ज्ञान कैसे होगा मुझे, मन को लौटेगा कहना पड़ेगा ना, विषयाकार विशिष्ट मन लौटे बिना आप ज्ञान नहीं हो सकता, और लौटने की बात कहीं कहीं नहीं है, जब लौटेगा तो प्रश्न उठेगा कैसे क्या लेकर लौटा वो वहां से, मन क्या लेके लौटा वहां से, घटाकार को प्राप्त हुआ था मन, वह घट को तो वही छोड़ दिया, मन इस आकार को ही छोड़ चुका, क्या नाम नाम लेकर आया उसने, क्या नाम विशिष्ट आकार को लेकर आया, नाम विशिष्ट आकार भी लिया था कि मानस आकार भी ला कहना पड़ेगा, पार्थिव आकार को तो छोड़ आया है वहां, एक मानस कल्पित आकार लेकर आया, लाना ही पड़ेगा कल्पना, मन ने घटाकार की कल्पना की, उस कल्पित आकार लेकर के आ सकता है, और कल्पित आकार को लेकर के ही उसमें सत्यत्व को आरोप करके घटो अस्थि ऐसा व्यवहार कर लेगा, इसके बिना आपको घटक ज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसे किए बिना प्रक्रिया के अनुसार विचार करते हैं तो ये कह रहे हैं। इसीलिए गृहत्वा शरीराभ्यंतरम निवेशेत यतो ही मनसोह घटादिप्य पृथक भूय चलनादिकम असंभवी, कि मन का घटादियों से अलग हो करके चलन आदि व्यवहार ही नहीं कर सकते। तदेव आह उसी को कह रहे तथा आकार गुणत्तान्न द्रव्याच चलन मृधक शक्तेर्न चापि तज्ज्ञानम येन सा तन्निवेदये। तथा द्रव्याच पृथक चलनम न आकार गुणत्व, कि मन आपके मत में सूक्ष्म, हमेशा कोई भी सूक्ष्म वस्तु हो बिना किसी स्थूल आधार लिए चल फिर नहीं सकता, उसको आधार चाहिए, अभूत है, कहीं आधार पर ही तो रहेगा, पेड़ में रहता है, अरे सिर्फ नाम ही सुनो हवा, हवा लग गया बोल देते आज की भाषा में, तो हवा लगना, हवा लग गया का मतलब क्या, यहाँ से वहां पेड़ के नीचे जा रहा था, वो हवा में जो था पेड़ पे बैठा हुआ, तो वो हवा को माध्यम बना के उसके सर पे चढ़ गया, हवा के माध्यम से आए इसलिए हवा लग गया बोल दिया जाता है। ये भूत तो सूक्ष्म है, बिना आधार के कैसे चलेगा, वो कभी किसी को आधार बना लेता, किसी को आधार बना लेता, कोई भी सूक्ष्म वस्तु उसका नियम है हमेशा किसी ने स्थूल वस्तु को आधार बना करके ही उसका चलनात्मक व्यवहार होता। और मन सूक्ष्म होने के नाते ये आपको मानना पड़ेगा, द्रव्य को आधार बना करके ही मन भी आएगा जाएगा कहीं भी आएगा, द्रव्याच पृथक द्रव्य से पृथक हो करके चलना न चलन क्रिया मन आदि में नहीं मान सकते। आकार गुणत्वात् दूसरा हेतु दिया आकार गुणत्वात् और कहते भी आकार को भी धारण करता है और गुणों को भी ग्रहण कर लेता है, वहां के जो रूप रस गंध वगैरह है गुण उनको भी लेके चलता है, उनका भी ज्ञान होता है ना आपको, केवल आकार का ज्ञान तो नहीं होता, रूप रस गंध का भी ज्ञान हो जाता है, उससे भी अलग करके नहीं चल सकता, न द्रव्य को भी छोड़ के नहीं चल सकता, आकार को भी छोड़ के नहीं चल सकता, गुण को भी छोड़ करके नहीं चल सकता, इनमें से किसी ने इसको पकड़ के ही वो मन का आनंद होता। शक्तेर दचापि तद ज्ञानम और शक्ते है तद ज्ञानंच अपि न, और शक्ति से भी वृत्ति से भी नहीं तो वह ज्ञान हो नहीं सकेगा, वृत्ति भी किस पर आधारित होकर चल, जैसे हम लोग चैतन्य गया कैसे गया, तो व्यापक है चैतन्य गया कैसे, तो आपको कहना पड़ता वृत्ति पर, वृत्ति अवचिन चैतन्य अंतकरण अवचिन चैतन्य होकर, इंद्रिया अवचिन चैतन्य होकर, विषयावचिन चैतन्य होकर तभी आना जाना व्यवहार होगा। अब आकाश गया कैसे कहेंगे आकाश गया, अगर घटाकाश गया, घट भी उपाधि छोड़ो तो आकाश में चलन नहीं हो सकता, इसे जो भी सूक्ष्म स्तर के पदार्थ होता है अमूर्त पदार्थ बिना उपाधि का वह चलने ही नहीं सकते, व्यवहार नहीं हो सकता, उनको ज्ञान भी नहीं हो सकता, ये कह रहे ये न सातन निवेदयेत, जिसके आधार पर वह शक्ति उस ज्ञान का निवेदन कर सके, घटाधिक ज्ञान का निवेदन कर सके, यह भी वास्तव में संभव नहीं है। ठीक है, न द्रव्याच्चेति शक्ते पार्श्वे तथा भूतम ज्ञान अपि नास्ति, शक्ति के पास तो उस प्रकार का ज्ञान भी नहीं हो सकता, ये न जिस ज्ञान को लेकर के सा शक्ति तत् घट को निवेदित ज्ञापित इस जीव को बोध करावे। तब कोई कह सकते हैं नो घटाभ्यंतरे वर्तमान शक्ति रेव शरीराभ्यंतरम प्रविशति, कहते घट के भीतर में एक शक्ति विशेष है, वो क्या है, वो आ जाता है आपके अंदर और आपको घट का ज्ञान करा देता है, सूक्ष्म वहां भी है शक्ति और आपके यहां भी भीतर का शक्ति है, वहां की शक्ति आगे यहां शक्ति तादात्म हो जाए तब आपके यहां का ज्ञान हो जाएगा। वही कार्य अगले श्लोक में अंतर्विशति चेत् शक्तिर् अंतरप्युपलम्भनम् अप्रवेशात्म मनसः संबंध उपपद्यते, कहते शक्ति भीतर प्रवेश कर जाती है, घट निहित शक्ति आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है मन के द्वारा, यदि ऐसा कहते हो शक्ति जब आ गई तो शक्तिमान भी आना ही पड़ेगा। शक्ति शक्तिमान कभी अलग होते नहीं, बोलने से पहले सोचा नहीं पूर्व पक्ष ने, यदि शक्ति आ गई तो शक्तिमान घट भी आ गया अंदर कहना पड़े, फिर अंदर घट मिलेगा क्या? क्या शक्ति शक्तिमान घट को वही छोड़ करके शक्ति अकेले आ जाएगी यहां पे? ये तो हो नहीं सकता। इसलिए यह पक्ष भी ठीक नहीं कि घट में कोई शक्ति मानना और वो यहां आ जाना, यह व्यवहार भी आपका गलत है, क्योंकि शक्ति बिना शक्तिमान का चल नहीं सकती। नहीं तो क्या होगा, अंतर अपनी उपलब्ध, भीतर में फिर घड़ा उपलब्ध होना चाहिए आपको। अब प्रवेशात, लेकिन प्रवेश ही ऐसा नहीं हो सकता। अतएव मन से संबंध न उपपद्यते, मन के साथ का संबंध भी नहीं हो सकता है। वही करें घटात्यंतर विद्यमान जो शक्ति है वो शरीर के भीतर प्रवेश कर जाएगा, इति चेत न। क्यों? शक्त्यास शक्त्याश्रयस्य घटस्यापि, शक्ति के साथ में शक्तिमान जो शक्ति का आश्रय है घट, उसका भी प्रवेश मानना पड़ जाएगा। प्रवेश से आवश्यकत्वात् यावच्छन घटस्य शरीरे प्रवेश तावद अनुप्रमाणेन मनसा घटस्य असंबंधात्। जब तक घट जो है शरीर में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर पाता, तब तक अनुप्रमाण वाला मन के साथ घट का संबंध भी नहीं हो सकता। अतः घट ज्ञान सर्वपत्ते है, इसलिए घट का ज्ञान ही किसी को नहीं हो पाएगा। अतः घटे शक्ति स्वीकृति असंगता, घट में शक्ति आदि मानना बिल्कुल असंगत। फिर कैसे घट ज्ञान होता है भाई, आप ही बताओ। कहते देखो, और थोड़ा प्रक्रिया को, इंद्रियों का चाल को समझो, कैसे इंद्रियां व्यवहार आपको धोखा देते हैं कि मैंने ज्ञान दे दिया है, ज्ञान दिला दिया। विभुत्वेन इंद्रियाणान्ते किं वृथैव शरीरता चक्षुषा छेद अर्पितं मे मनस आत्मन्यथार्प्यते। कहते इंद्रियों को विभू, विभू का तात्पर्य सर्वव्यापक नहीं, मध्यम परिमाण। जैसे आपका जो आंग जो है कितनी दूरी तक देख सकती है, काफी दूर तक लंबा चौड़ा क्षेत्र आप देख लेते हैं, कैमरों में भी क्या लेंस पे लेंस लगाना पड़ता नहीं, वो लंबा लंबा 27 किलोमीटर लंबा एक कैमरा बना रखे, 27 किलोमीटर लंबा वो आसमान की सारी चीजों को देख लेंगे, नासा में कई लेंस लगे हैं बीच में, ताकि उस ढंग से कि बाहर बहुत बाहर जो है रेडियस है उसका, बाहर जो 27 मीटर कोने में जो बैठा हुआ है वहां पर बता रहे हैं वो 16 मीटर लंबा 50 फुट का, यूं करके है वो वहां से 27 मीटर, और इस ढंग से बना सकते, यूं हिला भी सकते हो, उतना मोटे चीज घुमा भी सकते हो, यूं करके कितनी तकनीकी से बना रहे, ताकि अधिक से अधिक आसमान को देख सके, स्पेस। और जिस ग्रह विशेष नक्षत्र विशेष टुकड़ा वाटिका को उसको अध्ययन कर लेते हैं, फोटो खींचो सब कर सकते हैं, उसे तो देखना ही नहीं सब काम होता है। और यदि साधन में लगता है कि फिर भी जितना भी कर लो उसकी भी एक सीमा ही तो है, सर्वव्यापक तो नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं विभू शब्द का अर्थ क्या लेना, मध्यम परिमाण ही लेना। इंद्रियाणाम विभुत्वेन ते, ते मने आपके मत में तव मत है, इंद्रियां विभू होने के कारण से, मध्यम परिमाण वाले होने के कारण से पृथैव शरीरता किम, क्या आपका यह शरीर आदि मानना व्यर्थ नहीं होगा? यदि इंद्रियां ही चाह करके सब कर सकती हैं तो इन शरीरों की अपेक्षा कहां रह गया? चक्षुषा चेत अर्पितम, तभी कहता है पूर्व पक्षी मान लो, लेकिन विभू तो है लेकिन बिना कोई अधिष्ठान की इंद्रियां भी काम नहीं कर पाती, सूक्ष्म है वो, शरीर रूपी स्थूल शरीर के बिना इंद्रियां बैठकर कोई काम नहीं कर सकती। चक्षु क्या करता है, इसको लाता है, ये कर चक्षुषा अर्पितम मनसा, चक्षु का द्वारा मन को अर्पण किया, मन के द्वारा वो मुझ आत्मा में, मैं आत्मनी, अतः अर्पिते चेत अर्पण करता है, ऐसे कहते हो तो नहीं हो सकता करके अगले श्लोक में जोड़ेंगे। टीका यदा इंद्रियाणाम विभुत्वेन मध्यम परिमाणवत्वेन, मध्यम परिमाण वाला होने से घटादि ज्ञान नाम सिद्धि मन्यते, घटादि ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तरी किम ते तम ते क्या आप जाते बताइए शरीर था शरीर सत्तम शरीर का सत्ता मान के क्या फायदा वृथैव व्यर्थम उरी कर सकते मैंने व्यर्थ ही आपको मान रहे जब इंद्रियां ही सब काम कर सकते अपने आप तो शरीर की जरूरत क्या रह जाती इसलिए आपको मानना पड़ेगा इंद्रियां अपने मन मर्जी कुछ भी काम नहीं कर सकते बिना शरीर का फिर शरीर में रहकर करते कैसे हैं वो नई तीर्थ के बाद ननु चक्षुषा विषय आदाय मन से समर्पित है पहले वो करते क्या है चक्षु क्या करेगा चक्षु के द्वारा विषय को लाया जाएगा फिर मन में अर्पण होगा उसको मन के लिए दिया हुआ उन विषय को मन क्या करता है मनुष्य तम आत्म ने समर्पित मन भी उन विषयों को आत्मा के लिए समर्पित कर देता है इति शरण्य इस क्रम से शरणी से क्या हुआ आत्मनो घटाधर अप्रोक्षानुभूति भवती आत्मा घटाधि की अप्रोक्षानुभूति हो जाएगी यदि चेत तरी भवताम फिर तो आप तो हमारे मत में आ गए तदात्मन्य परोक्षत्वे भवेदाप्त वच स्फुटम ये विकल्पा शक्तिगतास्ते अप्यायान्ति मनः प्रति कहते हैं फिर तो तद आत्मनि अप्रोक्ष मन आत्मा में ले आए और आत्मा में इसलिए अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है सर्वव्यापक मैंने व्यापक न होते हुए मध्यम परिमाण वाली इंद्रियां क्या करते हैं विशेष संबंध करते हैं और विशेष संबंध मध्यम परिमाण वाली इंद्रियां विषय को लाकर मन को देते हैं और मन क्या करेगा अहंकार को देगा अहंकार क्या करेगा बुद्धि को देगा बुद्धि क्या करेगी वो आत्मा को समर्पण कर देगी सांख्यिकी प्रक्रिया तब बुद्धि जो है जब अर्पण करती पुरुष को पुरुष उसको मेरा ऐसा स्वीकार करके भोग करता है इस प्रकार से घटादि का ज्ञान और उसका सुख दुख मोह वगैरह जो भी है वो आत्मा को प्राप्त बार बार होता है यदि आप ऐसा कहते हो फिर तो हम शैव सिद्धांत व्याप्त मन भी गए हम यही मानते हैं शिव ही ऐसा हो रखा है और शिव रूपी इंद्रियां क्या करते हैं विषय रूपी इंद्रियों के साथ संबद्ध करके उनको मन रूपी शिव को ला कर देते हैं और मन रूपा शिव क्या करेगा अहंकार रूपी शिव को देगा अहंकार रूपा शिव बुद्धि रूपी शिव को देगा अबुद्धि रूपा शिव इस पशु रूपा जीवात्मा शिव को भी देगा इस तरह से पशु रूपा जीवात्मा सुख दुख का सबका भोग करता है ज्ञान प्राप्त कर लेता है यह हमारे सिद्धांत में दूसरे शब्दों में नहीं दिया इतना ही है कि तुम्हें सबको शिव नहीं कह रहे हो प्रक्रिया वही अपना रहे हो इसे तस्माद आप्तवच स्फुटम आप्तवच मैंने हमारा सैव सिद्धांत ही तुम्हारे कथनानुसार है ना स्पष्ट हो गया आप्तवच मैंने सैव सिद्धांत तरी भवताम आपने भी हमारा सैव सिद्धांत को ही स्वीकार कर स्फुटम भवती मनसि आयातम स्वीकृतम क्योंकि जो है कहते हैं भवता मत सिद्धांतम इत्याश मैंने आपने भी अंततो कहता मेरे ही सिद्धांत को अनुमोदन कर लिया है अस्मा भी सदैव आत्मनो ज्ञान इच्छा क्रियावत स्वीकारा क्योंकि हम लोग अपनी आत्मा में ज्ञान इच्छा और क्रिया भी स्वीकार करते और आत्मा ये सब हुआ है तो सभी में ज्ञान है सभी में इच्छा है सभी में क्रिया है और सभी अपनी क्रिया को दौड़ रहे घूम रहे फिर सब कोई दिक्कत नहीं इसे इंद्रियां गई कोई संशय परेशान नहीं है उसमें और तुम्हारे यहां तो इंद्रियां जड़ है उनकी इच्छा नहीं ज्ञान नहीं क्रिया नहीं कैसे जाएंगे वो और हमारे यहां सब शिव ही है सब ज्ञान स्वतंत्र ज्ञान स्वतंत्र इच्छा स्वतंत्र क्रिया है फिर तो फिर सब सर्वज्ञ हो जाना चाहिए कहेगा यदि यही तो स्वातंत्र की महिमा है और साथ साथ कर्म की महिमा पशु में स्वतंत्रता कोई थोड़ा सा कंट्रोल यदि करता है तो वो उसी का कर्म कर्म ही आपको रोकता है आपका खुद का कर्म आपको बंधन में डालता है नहीं तो आपकी पूर्ण स्वतंत्रता कभी कुंठित नहीं होती ये कहने जा रहे हैं देखिए इसलिए जो दोष हमने शक्ति के मामले में दिया और मन आदि को आपसे स्वतंत्र निरपेक्ष आदि मानोगे तो वहां भी यही दोष आएगा जो शक्ति में दिया गया था पहले विकल्प उठा करके ये विकल्प शक्तिगत्ता ते मन प्रत्यपि आयान्ति जो जो विकल्प उठाकर हमने दोष दिया था शक्ति को मानने में वे ही सारे के सारे दोष मन के प्रति भी आ जाता है इसलिए सबको अलग अलग नहीं मानना है, सबको शिव मानना, भेद मानना नहीं वास्तविक, सब शिव ही अनेक रूप धारण किए मान लेने में ही सारा समंजस हो सकता है। ये विकल्प नीचे दे सकते ज्ञान से हेतु स्वीकार, शक्ति का भी ज्ञान स्वीकार करने लगोगे, ये विकल्प असमितता मनसो ज्ञान से हेतु स्वीकार, मन का ज्ञान स्वीकार करने में जैसा जैसा दोष आया वैसे शक्ति को ज्ञान स्वीकार करने में भी दोष आएगा, तयेव आपतन्ति, अतः सर्वे भी पदार्थ, इसे सभी पदार्थ जो है इच्छा ज्ञान क्रियावंत स्वीकर्तव्य, इच्छा ज्ञान क्रिया वाले हैं, इसे मानना होगा। इच्छादिकं च परम शिवस्य स्वातंत्र्यम्, इच्छादि क्या है यही परम शिव का स्वातंत्र्य है, स्वातंत्र्य कर्वकार बना लेना स्वातंत्र्यम्। चक्षु रश्मि गमत पंचेत स प्रत्यक्षो वर्क रश्मिवत भावानां प्रतिबिंबत्व आत्मनोपिन युक्तता, कहते ऐसा है आपकी शैव सिद्धांत को मानने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि चक्षु की रश्मियां निकलती है, चक्षु नहीं जाता, चक्षु जहां है वैसा ही देगा, सूर्य जहां है वैसा ही है, इसकी रश्मियां आ जाते हैं विषय को प्रकाशन नहीं करते हैं क्या, चक्षु है इसकी रश्मियां निकल जाएंगी वस्तु को प्रकाशन कर जाते, इसमें क्या दिक्कत है, यह मानना कोई जरूरी नहीं चक्षु स्वयं जाता है या मन स्वयं जाता है, इतने मानने क्या जरूरत है। चक्षु रश्मि गमत्वम चेत कहता है कि भाई देखो दृष्टांत क्या दिया, अर्क रश्मिवत, सूर्य की रश्मियों के समान चक्षु की भी रश्मियां हैं जो यहां से निकलकर बाहर जाते हैं और वहां प्रतिबिंबित कर देते हैं। कल भी होता है ना कैमरा का दृष्टांत, प्रकाश गया वो चीज वहां से यहां थोड़ी आई है, यहां से वहां नहीं हो कुछ भी, केवल प्रकाश लाइट छोड़ा गया और चित्र अंदर घुस गया, कैमरे के अंदर आ गया, बंद हो गया, इधर से यहां रश्मियां गई और वहां का चित्र के ऊपर प्रकाश डाली, इतने मात्र चित्र आपके अंदर हो गया, घटाकार अंदर आ गया, लाने की जरूरत नहीं, घुसेगा ये वो, तुम कितना विकल्प उठाया कोई जरूरत नहीं इस विकल्पों की। फिर पूर्व पक्षी खड़ा हो गया, कहते इन विकल्पों का कोई आवश्यकता नहीं है, रश्मि का खेल है सारी चीजें, इंद्रियां हर एक इंद्रिय का अपने अपने तरीके की रश्मियां होती हैं, उनके माध्यम से विषय को ग्रहण कर लेते हैं और अंदर पहुंचा देते हैं, तो आत्मा को ज्ञान हो जाएगा। स प्रत्यक्ष, उसी का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है, चेत तक कहते हैं कि भावानाम प्रतिबिंबत्वे आत्मनोपिन युक्तता, लेकिन बताओ इसका मतलब आप ये कहना है इन रश्मियों ने उसका प्रतिबिंब तो यहां छोड़ा, चीज तो ज्ञान नहीं हुआ, फिर प्रतिबिंब का ज्ञान हुआ आपको, तो कैसे पकड़ते हैं दिमाग, इसका मतलब क्या, पिक्चर क्या है आपका, प्रतिबिंब तो है ना सिनेमा जो कैमरा में खींचा गया, असली है क्या, असली नहीं वो झूठा है, यदि असली होता वो फोटो से बात करो, फोटो से बात करेगा क्या, फोटो में कोई क्रिया है, कोई इच्छा है, कोई ज्ञान है वहां, ज्ञान इच्छा क्रियावंत है नहीं फोटो, इसका मतलब क्या है झूठा है, उसको सत्य मान रहे हो, इससे प्रतिबिंब हो गया वहां, उसका प्रतिबिंब घट गया आ गया तो असत्य है, उसका आत्मा के संबंध कैसे होगा, आत्मा का सत्य ज्ञान कैसे होगा घट का। भावानां प्रतिबिंबत्वे आत्मनोपि न युक्तता, फिर आत्मा के साथ उसका संबंध कथन करना और आत्मा उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना यह सब बिल्कुल संभव युक्त नहीं है। यथा अर्कस्य सूर्यस्य रश्मयो विषयस्य प्रकाशनं विषय प्रदेशं गत्वा कुर्वन्ति, जैसे सूर्य की रश्मियां विषय प्रकाशन विषय प्रदेश जाकर करती हैं, ठीक उसी तथैव लोके घटादिनां पदार्थनां चक्षु रश्मि गमत्वम अस्ति, चक्षु अपने रश्मियों के द्वारा जाकर के उनको प्रकाशन कर देता है। कैसे प्रकाशन होगा, भावानां च प्रतिबिंबम आत्मनि समापतति, मन भाव पदार्थों का प्रतिबिंब को आत्मा में डाल देते हैं, ठीक है, ततश्च घट ज्ञानम जायते, उसे आत्मा घट ज्ञान हो जाएगा, इति चेन्न ऐसे मत कहो। आत्मनो विषय एतस्याप युक्ततन्न, आत्मा के साथ इस विषय में इस प्रकार का संबंध भी आप नहीं कह सकते। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा मिथ्या होता है, सत्य नहीं होता। अगले श्लोक में कह रहे प्रतिबिंबेश्व सत्यत्ता अमूर्तेष्वेव गोचरात् तस्माद् घटस्वमात्मानम् अवगच्छन्न वस्तुतः।